अब ऐसे लोगों की कुछ बातें जो आपको आपके इस रास्ते से हटाना चाहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं अन करीब तुम भी देखोगे, वो भी देखेंगे। क्या देखेंगे? बेअय्युकुमुल मफ्तून, कौन इनमें से जुनून में मुबतला है। अल्लाह के नबी को कहते थे जुनूनी, अल्लाह कहते हैं इनको पता लगेगा कौन मफ्तून है। ये जो मफ्तून है ना फितने से, और फितने में किसी का डलना क्या है, उस पर किसी का असर होना। अरब लोग मसहूर के मानों में भी मफ्तून को लेते थे, मतलब ये कि इनको लग पता जाएगा कि अल्लाह के नबी मजनू है या तुम हो। इन्ना रब्बक हुआ आलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही वहुवा आलमु बिल मुहतदीन। बेशक आपका रब इन लोगों को भी खूब जानता है जो इसकी राह से भटके हुए हों, और वही इनको भी अच्छी तरह जानता है जो राह रास्त पर है, यानी हिदायत वालों और हिदायत से दूर लोगों को अल्लाह खूब जानता है। यानी अल्लाह पर डाल दो, ज्यादा ना सोचो कौन कैसा है, किसकी क्या नीयत है, किसका क्या इरादा है, उसको छोड़ दो। हाँ, जो नहीं करना, अब आयत 8 से एक टॉपिक शुरू होता है जो इसी से मिलता हुआ है, लेकिन जहां तक इकट्ठा होगा मैं वहां इकट्ठा ही पढ़ूंगी। फरमाया फला तुतील मुकज्जिबी, बस मत कहना मानिए झुटलाने वालों का। मतलब यह कि झुटलाने वालों के दबाव में हरगिज ना आए। ये किस तरह आपको दीन से पीछे करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो आप इनकी बात ना माने। हर सोसाइटी में जहां हक बात आएगी लोग उसकी तकजीब करेंगे। अगर तो आपको खुद यकीन है ना अपनी बात पे तो आप जम जाएंगे, और अगर जरा ढिलमिल यकीन हुआ ना तो आप पीयर प्रेशर में आके झुटलाने वालों के साथ मिल जाएंगे। क्या वो खानदान को तो फिर मैं नहीं छोड़ सकती ना, भाई बहनों को तो मैं नाराज नहीं कर सकती। तो फरमाया कि आपने खुशी से बात नहीं मान ली। क्यों भाई? इसलिए कि वद्दु लौ तुदखिनु फयुदखिनून। इसको हाईलाइट कर लें, यह आपके लिए एक याद रखने वाली आयत है। वद्दू वो चाहते हैं, वद से ख्वाहिश, वद्दत का लफ्ज पीछे पढ़ चुके हैं हम सूरह बकरा में। क्या चाहते हैं वो? लव, काश, अगर, दोनों मानिए। तुदहिनु, तुम ढीले पड़ जाओ, मदाहनत इख्तियार करो। दुहन अरबी जुबान में चिकनाई को कहते हैं, फैट को। तो तुदहिन चिकनाई रखना, यानी फिसल जाओ के मानों में। फयुदहिनून, तो वो तो आपको और भी फिसला लेंगे। ये है मुआशरे वालों की कोशिशें। आप कुरान पे फॉर्म हो रहे हैं, दिन ब दिन आपकी जिंदगी में अमल का रंग खूबसूरती से दिखता जा रहा है, अब लोग आपको फिसलाना चाहते हैं। किस चीज से लोग फिसलाते हैं? नंबर एक, सबसे पहले तबलीग, यानी तुम इस्लाम की तबलीग में ढीले पड़ जाओ, छोड़ो इस काम को, वापस चलो, चलो जॉब पे, चलो घर ठीक करो, ये करो, हो गई खत्म। तुम तबलीग में ढीले पड़ो तो ये भी तुम्हारी मुखालफत में नरमी इख्तियार करेंगे। फिर तुम इस्लाम को डाइल्यूटेड कर दो, कह दो आज के दौर में वो इस्लाम अच्छा जो वेस्टर्न कल्चर को अप्रिशिएट करे, तो देखना कोई मुखालफत नहीं। आप देखिए ऐसे मुसलमानों की कोई मुखालफत नहीं करता जो कुफार के रंग ढंग में, उनके पीछे कोई नहीं लगता। वो कहते हैं ये बहुत लिबरल मुस्लिम हैं, ये बहुत टॉलरेंट हैं, ये बर्दाश्त करते हैं, और आप जरा सच्चा दीन लाए कहते हैं ये इस्लाम फोबिया, ये इस्लामिज्म है, ये फुलाएं फुलाएं। तो जब दीन को डाइल्यूट करेंगे फिर ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। तुम इनकी गुमराहियों की रियायत करो, अपने दीन में कुछ चेंजेस लाओ, तरमीमात करो, तो देखना ये खुश होंगे। सूरह यूनुस में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बात आपको याद है कि नहीं, कि वो कहते थे कि अवेती कुराना, यानी या तो इस अबदिल हो, या इस कुरान को बदल दो, या फिर इसमें कुछ तब्दीली कर दो। वहां इस पर डिटेल से बात हुई, क्या था कि इस कुरान को या तो बदलो, ब्रिंग सम न्यू बुक, बड़ी अपडेटेड अप टू डेट, या फिर इसमें चेंजेस करो। आज आप चेंजेस वाला इस्लाम लोगों को पेश करें, सब खुश, गुठलियां पढ़ो, ये करो, फलां जगह शादी हो तो उससे पहले खत्म करा लो, लोगों को बुलाओ, कुछ दुआ कर लो, मिलाद कर लो, फिर देखना तुम्हारी शादी में कितनी बरकत होगी, बहुत खुश होंगे लोग। आज भी आप देखें जो लोग ऐसी बातें करते हैं, लोगों को फायदा हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, उधर लोग ज्यादा जाते हैं मजमे, ज्यादा लोग आए। वो कहते हैं चलो दीन की भी अर्ज पूरी हुई, कुरान भी सुन लो, दौरे कुरान है, कुछ नहीं बिगड़ा, माशाल्लाह कुरान पूरा हो गया, और ईद वाले दिन फिर ईद पार्टी में भी सब कुछ कर सकते हैं, इट्स ओके। बताइए वो शख्स जो डॉक्टर की दुकान पे जाए और सेहत ना लेकर आए, बीमारियां साथ लेकर आए, वो डॉक्टर कामयाब है? डॉक्टर के नहीं, नहीं ज्यादा तेज दवाई दी ना तो फिर रिएक्शन ही ना हो जाए, एलर्जी ना हो जाए, अच्छा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, चलो मैं ऐसा करता हूँ ग्लूकोज की गोलियां घोल के दे देता हूँ इसको, चलो साइकोलॉजिकली इसको लग भी गया कि मैंने इलाज करा लिया और इसकी तबीयत पे बोझ ना है, अच्छा होता है वो डॉक्टर, और वो के बार बार आते ही रहो मेरे पास। अकलमंद डॉक्टर कौन सा? ना ये अकलमंद है डायल्यूटेड, और ना वो अकलमंद है जो बहुत ही सख्त हाथ फेर दे। वो डॉक्टर है जो तबीयत का लिहाज करे, पहले देखे गर्म मिजाज है, ठंडा है, बीमारी के ना ये देखे, फिर उसके ऊपर फाहा रखे। तो कुरान की तालीम, कुरान का सीखना सिखाना, ये भी किसी डॉक्टर की दुकान से कम नहीं है। आपने मैंने मुदाहनत इख्तियार नहीं करनी, क्योंकि जब इस तरह की मुदाहनत आती है ना, तो फिर लोग क्या कहते हैं, वो भी तो मौलवी साहब ही है ना, वो भी तो दर्स वाले ही है ना, वो भी तो दर्स देती हैं, तुम कौन सी जगह पे जाने लग गई हो, उन्होंने तो आके कभी तनकीद नहीं की सूद पे और इस पे, और तुम क्या? वो तो कहते हैं हाँ एक घर तो ले ही सकते हैं, मजबूरी है, और वो कहते हैं कि ससुराल की खुशी और बच्चों की शादियों में कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है, लिहाजा अब तुम बैठ जाओ घर, वहां जाके पढ़ो, जो तब्दीलियां नहीं करवाते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अब तुम इनको खुश करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये तुम्हें ढीला करेंगे। अच्छा, इस आयत पे जब भी मैं आती हूँ ना, तो मुझे सूरत माईदा की वो आयत जरूर याद आती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अन्फुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम। बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो, तुम्हें कभी नुकसान नहीं दे सकता वो शख्स जो भटक गया अपने रास्ते से। भटका हुआ शख्स तुम्हें कुछ नहीं नुकसान देगा, बिगड़ा हुआ हिदायत से दूर शौहर तुम्हें कुछ नहीं नुकसान देगा, बिगड़ी हुई बीवी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, शर्त एक है इज़ा तदई तुम, जब तुम अपनी हिदायत पे जम जाओ, जब तुम्हें यकीन है मैंने जन्नत लेनी है, फिर तुम्हारी जन्नत कोई नहीं रोकेगा। याद रखिए अल्लाह के रास्ते की सारी मुश्किलात के पत्थर फूल बन जाते हैं जब आपको इस बात का यकीन हो जाता है कि मैं हक पे हूं, मैंने नहीं पलटना। घर वालों को भी पता होता है ये स्टबन हो गए, अब ये चीज खरीद के ही आएगी। कभी आपने कोई शॉपिंग करनी हो ना, तो मियाँ जितनी मर्जी मुखालफत करे, जब वो देखते हैं ना आपको इसरार, वो कहते हैं इसने लेके ही छोड़ना, चुप कर जाओ, पीछे करो, ले लो जो लेना है। आप हिदायत को ऐसी खूबसूरत चीज बना लें कि आपके घर वालों को यकीन आ जाए ये नहीं टलेगी। आप करो क्या, फला तुती कुल हल्ला फे महीन। यहां से आयत 10 से अगली चंद आयतों में एक किरदार है, उसकी जरा बुराइयां देखिएगा। नाम लिए बगैर अल्लाह ताला ने कहा वला तुती, आमतौर पर तो पहले ही कह दिया फला तुतील मुकज्जिबीन। यहां एक किरदार को सामने लाया गया कि देखो मत कहना माना कुल्ला हर एक हल्लाफ, कस्में खाने वाला, हल्फ उठाने वाला, यानी बहुत कस्में खाने वाले, महीन बेअसल बेवक्त को, यानी हरगिज ना दबिए किसी ऐसे शख्स से जो बहुत कस्में खाने वाला और बेवक्त हो। महीन का लफ्ज हकीर और जलील और घटिया आदमी के लिए बोला जाता है। बहुत ज्यादा कस्में खाने वाले आदमी की लाजमी सिफत है कि वो जलील होगा। वो कस्में भी इसीलिए खाता है ना कि वो उसको कॉम्प्लेक्स होता है कि लोग उसे झूठा समझते हैं, लिहाजा उसको पता होता है कि लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे तो कसम खाता है, और फिर अपनी नजरों में भी जलील होता है और माशरे में भी। दो बातें इसमें आ गई, नंबर एक हल्लाफ और नंबर दो महीन। तीसरी सिफत हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम। हम्माज हमजा से क्या है सूरत, वही लुल्ली कुल्ली हुमजतिल लुमजा, वही लफ्ज है। हम्मास ताने देता है, लम्मास भी नमीम क्या चुगलियां खाता फिरता है, और मन्नाइल खैरी भलाई से रोकता है, और उसके बस सारी सिफतें पढ़ ली, इनको अलग से डिफाइन कर देती हूँ। मोतद हद से गुजरने वाला, असीम बहुत गुनाहगार है, यानी भलाई से भी रोकता है, जुल्म और ज्यादती में हद से गुजरता है, बद किरदार है, और उतुल्लिम बाद अजालिका, इन सारे ऐबों के साथ उतुल भी है, बद असल जनीम वलदुज़्ज़िना अनका नजा मालिम व बनीन, जबकि बहुत माल और औलाद भी रखता हो। यानी इतनी बुराइयां इस शख्स में, हाल क्या इसका, इजा तुतला अलैहि आयातुन क़ाल असातीरुल अव्वलीन, जब हमारी आयतें इसको सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों के अफसाने हैं, पिछली बातें ओल्ड डेटेड बुक्स, क्या पढ़ते हो पुरानी बातें। का नहीं, सनसीमुहु अलल खुरतूम, अन करीब हम दाग लगाएंगे इसकी सूंड पे। ये सनसीमु, सीन भी अलग है नून भी अलग है, आगे लफ्ज है, सीन नून को निकाल दे, हा को निकाल दे, अंदर सीन मीम रह जाता है, सूंड। अन करीब हम दाग लगाएंगे, जिसको आप कहते हैं ना उसको जलाकर कुछ लगाना, वसम से है, वो सीन मीम रूट है। खुरतूम सूंड को कहते हैं, खारा तो मीम, हाथी की सूंड है लेकिन यहां मुराद नाक है। अब इसके बाद आगे वाक्य, लेकिन इन सारी चीजों को देखते हैं। लफ्ज आया मन्ना इलिल खैर, मन्ना मुबालगे का सीगा है, बहुत ज्यादा मना करने वाला, प्रिवेंटर, ऑब्स्टिकल, किसका, खैर का। खैर के लफ्ज अरबी में माल के लिए भी आते हैं और भलाई के लिए भी आते हैं, दोनों मानों में लेंगे। अगर खैर से मुराद जहां माल हो तो मतलब क्या कि ये सख्त बखील है, कंजूस है, किसी को फूटी कौड़ी देने का भी रवादार नहीं है। और खैर को अगर नेकी और भलाई के मानों में ले तो मतलब ये हर नेक काम में रुकावटें डालता है और लोगों को इस्लाम से रोकता है, क्योंकि खैर इस्लाम भी है। उतुल अरबी जुबान में ऐसे शख्स के लिए बोलते हैं जो बहुत हट्टा कट्टा हो और बहुत खाने पीने वाला, और इसके साथ बदखुल्क, झगड़ालू और सफाक हो। कोई ऐसा शख्स में सोचिए, बद तहजीब सा, खाने से होश है, खाना पीना घर आए बोल रहे हैं, और सोना, सो के उठे तो चीखना बद अखलाकी के साथ, और खाने पे तो चपड़ चपड़ करके आवाजें निकाल के खा रहा है, बात करे तो जोर से, चले तो पाँव मारे, ऐसे शख्स को बद तहजीब को उतुल कहते हैं। और जनीम लफ्ज देख लीजिए, अरब लोग वलदुस जिना के लिए जनीम बोलते थे, ऐसा शख्स जो दरअसल एक खानदान का फर्द ना हो मगर इसमें शामिल हो गया हो। कभी आपने कोई बकरी देखी होगी ना, तो उसके गर्दन के साथ एक गोश्त का लोथड़ा सा लटक रहा होता है, ऐसी एक लंबी सी चीज है, उसके लिए भी ये लफ्ज आते हैं। और तो लिनजनीम, क्या कि ये शख्स एक लटका हुआ शख्स है, यानी है किसी और खानदान का, जिना की पैदावार है लेकिन अब उसको किसी खानदान में लगा दिया गया। तो इसी तरह जनीम कहते हैं वो शख्स जो अपने शर की वजह से मशहूर हो गया हो। अब ये सारी बातें किसमें थी, कुरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तफासीर से पता चल गया कि वलीद बिन मुगीरा, अल्लाह अकबर, बाज असवद बिन अब्द गौस और अखनस बिन शुरैक का कहते हैं, लेकिन कुरान ने ये कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने सिफात बयान करके बता दी कि बाद में आने वालों में जो भी शख्स इन सिफात का हामिल होगा वो खुद को इसमें समझ ले कि मैं अल्लाह के नबी के साथ क्या मामले करता हूँ। ये शख्स अल्लाह के नबी से बुगज रखता था, जहां आपकी बात होती, जहां आपका जिक्र होता, ये वहां जाके कुछ ना कुछ रोड़े अटकाता। और आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दीन की बात में रोड़े अटकाते हैं, उनको बस ये नहीं अच्छा लगता कि लोग दीन की तरफ चल पड़े। फिर आप देखिए यहाँ हम्मास का लफ्ज आया, और इसी तरह से मुख्तलिफ मशाइन, बहुत चलना फिरना, जिसको कहते हैं ना चलती फिरती, वो इधर गए उसकी बातें की, उसकी बातें की, उधर बातें की। अल्लाह के नबी एक दफा जा रहे थे, रास्ते में दो कब्रें आई, आप वहां रुके, आपने शाखें उतारी, सब्ज शाखें थी पत्तों वाली, और उसको उधर लगा के तो आपने फरमाया कि इनको अजाब हो रहा है, और किसी बड़ी बात पे नहीं हो रहा। एक तो पेशाब करते हुए पर्दे का ख्याल नहीं रखता था, यानी पेशाब की छींटे भी आती थी और पर्दा नहीं करता था, और दूसरा चुगलखोर था। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, मुस्तद की रिवायत है, अल्लाह अकबर। अब देखिए इस किरदार को सामने रखें तो क्या कोई कुरान पढ़ा हुआ या दीन से जुड़ा हुआ शख्स आता है? उजड़ और गंवार किस्म के लोग दिखते हैं ना। मुस्तद अहमद की रिवायत है कि आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं तुम में से सबसे भला शख्स कौन है? देखिए अल्लाह के नबी का सिखाने का तरीका, लोगों को रग़बत दिलाते थे, लोगों ने कहा जरूर बताइए, फरमाया ये वो है कि जब उनको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए, और सुन लो सबसे बदतर वो है। अब हमें तो इसकी फिक्र है ना, नंबर एक चुगलखोर हो, दोस्तों में फसाद डालने वाला हो, पाक साफ लोगों को तोहमत लगाने वाला हो, यानी अच्छे लोगों को भी ना छोड़े। इसी तरह से तिर्मिजी की रिवायत में आता है कि भलाइयों से बाज रहने वाला और बाज रखने वाला, हलाल चीजों और हराम कामों से हटकर हराम खोरी और हराम कारी में पड़ जाए, गुनाहगार, बदकार, मुहर्रिमात को इस्तेमाल करने वाला, अल्लाह अकबर, बदगू बदगू, जमा करने वाला और ना देने वाला, यानी ये लिस्ट है अल्लाह के नबी की नजर में नापसंदीदा लोगों की। मुस्तद अहमद की रिवायत है कि आपने फरमाया जन्नती लोग गिरे पड़े आजिज और जईफ हैं, यानी डाउन टू अर्थ जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा आजिज से लोग वो जन्नत में जाएंगे जो अल्लाह के यहाँ इस बुलंद मरतबे पर है कि अगर वो कसम खा बैठे तो अल्लाह ताला पूरी कर दे, और जहन्नमी लोग सरकश, मुतकब्बिर और खुदबीन होते हैं, अपने आप को ही देखते रहते हैं। ایک حدیث میں جمع کرنے والے اور نہ دینے والے بدہو اور سخت خلق کا ذکر ہے. لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ زنیم کون ہے, تو آپ نے فرمایا بد خلق نمبر ایک. دیکھیں یہ بری باتیں نا, اس کو لکھ لیں, ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی بھی فرصت ملے گی. تو جو بھی روایت ہے لیکن کم از کم ہمارے پاس ایک لسٹ تو تیار ہو رہی ہے نا, تو کون لوگ ناپسندیدہ ہے, نمبر ایک بدخو, پھر خوب کھانے پینے والا, ہر وقت غم ہی کھانے اور پینے کا, پھر لوگوں پر ظلم کرنے والا پیٹو آدمی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نالائق شخص پر آسمان روتا ہے جسے آس خدا نے تندرستی دی, پیٹ بھر کھانے کو دیا, مال اور جاہ بھی عطا کیا, یعنی سب کچھ دیا, اس کے باوجود لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے. زنیم بدنام کو بھی کہتے ہیں جو بدنام ہو. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب سے بچا کے رکھے, یہ بہت ہی بری باتیں, اور یہ ایک وہی کردار ہے جو واقعی پھر اللہ کے دین کا دشمن ہوگا. اب یہ جو بات ہے کہ ان کی ناکوں پہ شان لگائیں گے, تو یہ کیسے ہے؟ دنیا میں بعض کہتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کو جب مارا گیا اس کی طرف بھی اشارہ, اسی طرح جہنم میں بھی ان کو نشان لگائے جائیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم کی مہر لگ جائے گی, منہ کالا کر دیا جائے گا, اور ناک سے مراد پورا چہرہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب برے لوگوں کو بچائے. آیت نمبر 17 سے آگے پوری ایک سٹوری ہے, ہم اس کو سٹوری کے طور پہ پڑھیں گے, لیکن پہلے میں آپ کو اس کا تھیم تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو چنا, اپنا آخری اور پیارا نبی ان تک بھیجا. اب یہ وہ کیفیت تھی کہ جس پہ وہ شکر کرتے تو سر سجدوں سے نہ اٹھتے, لیکن انہوں نے ناشکری کی. اللہ نے ان کی اس ناشکری کو بیان کرنے کے لیے واقعہ سنایا ہے قرآن میں, کیا کہ دیکھو ذرا کہ یہ لوگ کس طرح سے حق بات کے مخالف ہیں. اب یہ قصہ سنتے ہیں, یہاں پہ اس کو سنتے وقت سورت کہف کا بھی قصہ ذہن میں رکھیے گا. رکوع 5 میں ہم نے پڑھا تھا نا, دو دوستوں کا قصہ تھا, اللہ نے ایک کو دو باغ دیے تھے, ایک کو نہیں دیا تھا, تو وہ کس طرح سے اس پہ اکڑتا تھا. بیسیکلی دولت کے نشے میں چور ہو کر جب لوگ اللہ کے راستے کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا تذکرہ. ہم اس کو قصے کی طرح سے اکٹھا پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17-17, اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, بے شک ہم نے ان کو ازمایا. کن کو ازمایا؟ ہم کے نیچے لکھیے ڈاؤن ایرو میں مکہ والوں کو, یعنی ہم نے اہل مکہ کو اس آزمائش میں ڈالا. کما بلونا, جیسے ہم نے ازمایا. بلو وہی لفظ ہے جس سے بلا ہے ازمائش. اصحاب الجنہ, باغ والوں کو, یعنی باغ کے مالکوں کو ہم نے جس طرح ازمایا تھا اسی طرح ازمایا. کیا ہوا تھا؟ اذ اقسموا, جب انہوں نے قسمیں کھائیں. کیا قسمیں؟ لا یسرمنہا مصبحین, البتہ ہم صبح سویرے اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے. سوات رامیم سورما, توڑنا, پھل توڑنا, یعنی ہم صبح صبح جائیں گے اور اپنے باغ کے پھل توڑ کے لے آئیں گے. ولا یستثنون, اور کوئی استثناء نہیں کیا. کس چیز میں استثناء نہیں کیا؟ اس کے دو معنی لکھ لیجئے. نمبر ایک کہ سارے ہی پھل ہم گھر لے آئیں گے, کسی غریب کو نہیں دیں گے, ایگزمپشن کے معنوں میں. اور لا یستثنون کا ایک اور معنی ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا, یعنی ہم ضرور ہی یہ کام کر لیں گے اور اس طرح سے یہ بات ہوگی. خیر کیا ہوا؟ فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون, پس راتوں رات وہ سوئے ہوئے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی. یہ تو یہ باتیں کر کے سوئے, کھڑی فصل تھی, صبح کاٹنا تھا, جلدی اس لیے جا رہے تھے کہ کوئی فقیر اور مسکین نہ آئے, اور سارا خود ہی لے کے آنے کے پلان تھے. اللہ نے راتوں رات اس پر ایک عذاب کا کوڑا برسایا, اور فس بہت کسریم, اور کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اس کو کر دیا, یعنی وہاں فصل ختم ہو گئی. فتنادو مصبحین, بس انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا صبح سویرے. صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے نا, تو ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں, ویک اپ کالز دے رہے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو. اور فصل کاٹنے کا دن بہت خوشی کا دن ہوتا ہے, تو وہ لینے کے لیے نکلنے لگے. کیا کہہ کر اٹھا رہے تھے دوسروں کو؟ انخدو علی حرثکم ان کنتم صارمین, کہ چلو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکلو. غدوب صبح کے وقت کو کہتے ہیں, اور اگر پھل توڑنے ہیں تو جلدی نکلو, یعنی دیر کی تو فقیر آ جائیں گے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہم فصل کاٹیں گے, تو جلدی سے نکلو. فن تلقو, وہ نکلے. وہم یتخافتون, اور وہ اس طرح سے نکلے کہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے, یہ جو لفظ ہے نا یتخافتن خفیہ سے ہے، خفیہ خفیہ باتیں کر رہے تھے، اور تا میں میوچیلٹی ہے ایک دوسرے سے، یعنی چپکے چپکے باتیں کیا کر رہے تھے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ آج بالکل نہ داخل ہو تم پر کوئی مسکین، یعنی جلدی جلدی چلو مسکینوں کے اٹھنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے تم اپنے باغ میں پہنچ جاؤ. خیر، وغدوا علی حرد قادرین، اللہ اکبر، وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے نکل گئے. حرد کا لفظ جو ہے نا، اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا اور نہ دینا، قصد اور طے شدہ فیصلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا اس کا معنی ہے سرعت، سوئفٹ، جلدی سے. تینوں معنی ٹھیک ہے، یعنی نیت کیا تھی، جلدی چلو، جو بات طے ہو گئی اس پہ عمل کرو، اور کسی غریب کو کچھ نہیں دینا، ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے تاکہ سارا کا سارا پھل ہمیں مل جائے اور ساری فصل ہم کاٹ کے لے آئے. چلو ٹھیک ہے. فلما روحا قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا، ہا سے مراد باغ ہے، جب اپنے باغ کی جگہ پر گئے تو دیکھا، کہنے لگے بے شک ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، یعنی وہاں باغ اور اس کی فصل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو ایک دم ان کو فیل ہوا کہ ہم کہیں اور چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نہیں نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ فصل تم کسی اور گیا، بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. کچھ بھائیوں کو احساس ہوا کہ نہیں بھائی، جگہ تو وہی ہے لیکن ہمارے باغ پہ رات کوئی ایسا عذاب آیا کہ ہماری فصل ختم ہو گئی. قال اوسطہم، ان کے بیچ والا، بیچ والا بھی کہہ سکتے ہیں اوسط، وسط سے، اور سب سے بہتر، دونوں بھی معنی ہے. یعنی ان بھائیوں میں جو سب سے سمجھدار تھا، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یہاں آپ کو سورہ یوسف یاد آئیے، حضرت یوسف کے قتل کے ارادے جب کیے تھے تو بھائیوں میں سے جو سمجھدار بھائی تھا اس نے کیا کہا تھا؟ لا تقتلوا یوسف، اس کو نہ قتل کرو. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری مخالفتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر والا ڈالتا ہے، اور اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل میں ڈال کر ایک بہت اچھا سبق دیا. کیا کہ تمہیں کہا تھا کہ تسبیح کرتے، صبح اٹھ کے تسبیح کرتے، نماز پڑھتے، کوئی اللہ کا شکر کرتے، فصل ملی تم اٹھ کے کاٹنے چل پڑے، اور نیتیں بھی اتنی خراب تھی. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، ہم واقعی گناہ گار تھے. یعنی باغ گیا تو ایمان واپس آ گیا، دنیا کی کھیتی جل گئی، آخرت کی کھیتی بچ گئی. خوش قسمت ہے وہ نقصان جو آخرت کے نقصان سے بچا لے، بہت ہی قسمت والا ہے وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی تکلیف، بیماری، دکھ آئے اور اس کے بدلے میں وہ آخرت کے دکھوں سے بچ جائے. فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا کہ تم نے کہا تھا میں نے نہیں کہا، تم نے کہا. اور ایسے ہی ہوتا ہے جب پھوٹ پڑتی ہے نا تو لوگ ایک دوسرے پہ الزام دھرتے ہیں. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، ہم ہی بے شک سرکش ہو گئے تھے. تھوڑی دیر کے لیے ہماری آنکھوں پہ پردہ آ گیا تھا، حب دنیا چھا گئی تھی، لیکن کوئی بات نہیں. اسا ربنا یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر بدلہ عطا کرے، اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ تھیم آف دا سٹوری کہ تکلیف آئی لیکن اللہ کی طرف پلٹا ہے، اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. بہت دفعہ تکلیفیں، بیماریاں، موتیں آتی ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے. تو انہوں نے تکلیف کو استاد بنا لیا، سمجھ کے سیکھے کہ اب تو ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اب اللہ اس سے ہم سب کو سکھاتے ہیں. کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب. جبکہ والعذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے. لو کانو یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ پورا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے مورلز ہیں. پہلی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کو اپنا حق نہیں سمجھنا. آج کا جو ویسٹرن اکنامیکل وے ہے نا، اس کی ضد ہے یہ واقعہ. آج کل لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جو کما رہا ہے وہ اس کا ہے، جو زیادہ کمائے گا اس کا ہے، جو کم ہے اس کا ہے. ایون ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ شیئر نہیں کرتے دوسرے کے ساتھ. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کہتے تم زیادہ کماتے ہو تو معاشرے کے دبے پسے لوگ جو ہیں ان کا حق ہے اس میں، زکات دو، صدقہ دو، چیریٹی دو، فائدہ ہوگا. इसी तरह आप देखिए कि आज जो वेस्टर्न तरीकाकार है उसमें बाज दफा लोग ऑर्गेनाइजेशन को देना पसंद करते हैं, किसी चर्च को दे देंगे, किसी हॉस्पिटल को दे देंगे, कुत्तों बिल्लियों का कोई हॉस्पिटल बना देंगे, लेकिन इंडिविजुअल बेस्ड लोगों के साथ शेयर करना इसका रिवाज नहीं है। और फीलिंग जाती है कि सभी तो खाते पीते हैं, दूसरों को तो जरूरत नहीं। हालांकि अगर आप इन साइड जाके देखें ना इन मुल्कों में, तो इंडिविजुअल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो रोटी कपड़े को भी मोहताज हैं। कभी आप रात को सड़कों के किनारे होमलेस लोगों को देखें, किस तरह से वो पतले पतले कपड़े लेकर अपने आप को बैठे होते हैं। और फिगर्स एंड फैक्ट्स खोल के देखिए तो जियूस जिनके बारे में आता है कि जिनकी दौलतमंदी मशहूर है, उनका आम शख्स गरीब है, यानी एक आम यहूदी गरीब है, इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है। सिर्फ चंद लोग चूंकि अमीर हैं तो फीलिंग होती है कि सब अमीर होते हैं। तो पता क्या चला कि इंसान के माल में से दूसरों का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें नशुक्री की सजा है। अल्लाह नेमत दे तो दूसरों से शेयर भी करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिन हालात में ये सूरत नाजिल हो रही है वहां मक्का वालों ने अल्लाह के नबी की जो नाकदरी शुरू की हुई थी उसकी तरफ इशारा है कि अब इन पर यह आजमाइश आने वाली है कि अल्लाह का नबी इनसे चला जाएगा और फिर इनको पता चलेगा कि हमने उसकी कितनी कदर की। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि लोगों गुनाहों से बचो, गुनाहों की शामत की वजह से इंसान इस रोजी से भी महरूम कर दिया जाता है जो इसके लिए तैयार कर दी गई है। फिर आपने इन दो आयतों की तिलावत की कि ये लोग बसबब अपने गुनाह के अपने बाग के फल और उसकी पैदावार से बेनसीब कर दिए गए। ये इब्ने अबी हातिम की रिवायत है। तो गुनाहों की वजह से रिस्क चला जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इससे अल्लाह की कुदरत का भी पता चलता है। खड़ी फसलें रातों रात तबाह हो जाए, कोई बंदा किसी फसल का मान ना करे, नेक बड़ी औलाद है, जवान बच्चे हैं, अल्लाह ना करे एनी टाइम अल्लाह ले सकता है। शौहर मिल गए, मोहब्बत वाले, घर का सुकून, एक क्लिक हल्ला करे तो सारी खुशी भरा सा बसा घर फिर खत्म हो सकता है। किसी नेमत पे मान नहीं करना, और जब कोई नेमत मिले तो उसमें से साथ ही साथ अल्लाह का हिस्सा पहचाने। फिर इसी तरह ये जो लफ्ज़ है ना कहा कि क्यों ना तुमने अल्लाह की तस्बीह की, तो इमाम सुद्दी कहते हैं कि उस जमाने में सुबहान अल्लाह कहना इंशाअल्लाह कहने के कायम मुकाम था, इंशाअल्लाह कहना चाहिए था। फिर इसके बाद एक और चीज पता चलती है कि बहुत सारे बुरे लोगों में सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ कम बुरे होते हैं और कुछ ज्यादा होते हैं। अब इस वाक्य को बेस करके जिसमें अल्लाह ताला ने सबको ये सिखा दिया कि देखो तुम अपनी फिक्र करो कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से तुम अल्लाह का कितना हिस्सा पहचानते हो और अपना कितना और दूसरों का कितना। अब जन्नत के बाग की बात है, दुनिया का बाग उजड़ा, आखरत का बाग नहीं उजड़ा। अल्लाह ताला अगली आयतों में जन्नत की बात करके हम सबको होश दिलाते हैं कि देखो तुम्हारी किसी बद अखलाकी, किसी नाशुक्री की वजह से तुम्हारी आखरत के बाग के साथ वो ना हो जाए जो इनके दुनिया के बाग के साथ हुआ, इसकी फिक्र करो। और अगली आयतों में जब जन्नत का जिक्र है तो आप देखेंगे कि उसको पढ़ते वक्त वाकई इंसान को ऐसे महसूस होता है कि जन्नत है तो बहुत करीब। ये अलग बात है कि हम उसको पाते नहीं है और पीछे लेते हैं। एक आखिरी बात है कि इन लोगों ने तौबा कर ली थी, इसी तरह हजरत यूसुफ के भाइयों ने भी तौबा कर ली थी। वहां भी वाकई हमने पढ़ा था, उसी के बाद उनको नबूवत मिली थी। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह सिर्फ नेक लोगों की नहीं सुनता, गुनाहगारों को भी सुनता है। जब अल्लाह ताला किसी को आजमाता है तो फिर उसके बाद उसको कभी ताना नहीं देता। बस जब हम कहते हैं हमने अपनी जिंदगी में इतने गुनाह किए हैं तो अब हमारे साथ क्या होगा, नहीं, तो कभी भी कोई बड़े से बड़े गुनाह करके आया हुआ शख्स अपने को किसी कॉम्प्लेक्स में ना डाले कि अब मैं तो जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकती और मैं तो दीन की खिदमत कर ही नहीं सकती। बस वह शैतान हमें इस तरह भी धोखे में डालता है कि तुम कहाँ करोगी, तुम तो इतनी गुनाहगार थी। जो जितना गुनाहगार है ना वो उतना नेक भी हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से कभी अपने आप को पीछे नहीं समझना चाहिए।